इन बातों को स्मरण करने से फायदे बहुत होंगे, खुशी तो होगी लेकिन दूसरे के स्वभाव संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। दूसरे का अवगुण भी आपका देखना बंद हो जाएगा, ना किसी के दोष दिखाई देंगे, ना अवगुण दिखाई देंगे, ना स्वभाव संस्कार, क्योंकि हम तो अपने नशे की प्याली हर वक्त पीते रहेंगे और खुशी में झूमते रहेंगे, तो हम इसको उसको क्यों देखेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा। ये तो मंच है, मंच पर हरेक अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आया है। किसी को पार्ट को देख करके हम विचलित होते हैं? अगर रामलीला के अंदर रावण अपना पार्ट नहीं बजाएगा तो रामलीला जचेगी? नहीं जचेगी। तो जिसका जैसा पार्ट है वो बजाएगा, लेकिन आपको क्या रहना है, खुश रहना है कि मुझे मेरा जो पार्ट मिला है बहुत अच्छा मिला है, बहुत संतुष्ट रहना है और बहुत खुशी में रहना है। दूसरी बात आती है निशाना। हमारा निशाना क्या है? समय कम है, थोड़े समय में ही आपको बताऊंगी। हमें 12:30 बजे तक ही आपको क्लास कराना है। निशाना होता है हमारा योग। योग के बिना हमारा नशा ठहरेगा नहीं। भले पहले शिव बाबा को क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर, योग का सागर नहीं कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना आपका योग नहीं लगेगा। जब आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं, कहां से आया हूं, क्या प्राप्त होना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, निर्णय शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो योग कैसे लगेगा। तो पहले आते ही हमें बाबा क्या सिखलाती है, प्यारे बाबा 7 दिन का क्लास ज्ञान लो, 7 दिन का कोर्स लो, फिर फोर्स भरने के लिए कौन सी युक्ति है, वो है मेडिटेशन, योग। क्योंकि योग है ही परमात्मा से कनेक्शन, और परमात्मा मेन पावर हाउस है। जैसे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन अगर मेन पावर हाउस से नहीं रहा तो लाइट कट ऑफ हो जाएगी और रोशनी नहीं आएगी। तो जितना आपकी बुद्धि का कनेक्शन हर समय परमात्मा के साथ जुटा रहेगा, उतना ही ज्यादा आपको लाइट और माइट प्राप्त होगी। और लाइट और माइट के द्वारा आप दो काम कर सकेंगे। लाइट क्या करता है, सबको रोशनी देता है, तो आप औरों को भी ज्ञान की रोशनी देने में सक्सेस रहेंगे, और शक्ति भी देता है। जो आज निर्मल है, कमजोर है, दुखी है, अशांत है, उनको शक्ति दे सकेंगे। लेकिन वो योग भी हमारा किस आधार पर टिका होगा, उसके लिए भी हमारी 4 बातें चाहिए। पहली बात है परमात्मा के साथ बहुत प्यार। जैसे पति पत्नी का प्यार होता है, एक दो के बिना रह नहीं सकती है। लैला मजनू का प्यार का गायन आपने सुना है ना, कि लैला अपने मजनू के लिए दूध लेने के जाती है और रास्ते में साधु बैठा है, उसको दिखाई नहीं दिया और साधु उसको आंख दिखाने लगा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि कौन बाबा बैठा है। उसने कहा बाबा तो भगवान की याद में बैठा है, लेकिन मैं तो मनुष्य की याद में जा रहा हूं, तो अभी मुझे पता नहीं है कहां साधु बैठा है। तो किसकी याद बड़ी है, किसका प्यार बड़ा है? तो हमारा प्यार बाप से ऐसा होना चाहिए, और उसी को कहा जाता है लगन। जितना हमारा अंदर से परमात्मा के साथ आत्मा का प्यार होगा, लगन का, उतना ही ज्यादा बाबा का प्यार हमें खींचेगा और हम उससे ले सकेंगे। वो कब मिलेगा, आत्मा के पास जितनी सच्चाई होगी, कहते हैं सच्चे दिल पर साहबराजी और झूठे दिल पर रावण की बाजी। तो आप सच्चा दिल रखेंगे तो साहबराजी होकर आपको जितने गुण उसके पास हैं आपको दे देगा, जितनी शक्ति उसके पास है आपको दे देगा, जो कुछ भी आपको चाहिए आप देगा। लेकिन आप सारी पांच तत्वों की प्रकृति की बातों को छोड़कर इस प्रकृति से ऊपर रहने वाले परमात्मा की बातों को सोचो और उसकी लगन में मगन रहो, तो प्रकृति भी हमारी दासी हो जाएगी। हम जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। हमारे जीवन के 50 वर्षों के अनुभव हैं, सुबह हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन संकल्प कर रहे हैं कि शाम को हम मंगाएंगे, लेकिन मंगाने से पहले वो चीज खाने की आ जाएगी, वो चीज तैयार हो जाएगी। इसका एकमात्र कारण है सच्चे दिल की बाप के साथ लगन। और जो लगन होगा, लगन से बाप को याद करेगा, याद में मगन हो जाएगा, इतना मगन हो जाएगा कि उसको योग से नीचे उतरने की इच्छा नहीं होगी। हमारे सामने सैंपल है, बाबा ने दादी दीदियों को, इतने बड़े बड़े भाइयों को, बाप दादा के समान है वो, और इस स्थिति पे ला दिया है कि आप उनको देखते हैं तो लगता है कि ये बाबा की लगन में और मगन में डूबे रहते हैं। जब उसके लगन के मगन में हम डूबे रहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? एक मगन स्थिति में ज्वाला अग्नि दिखाई देगी, अगन। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्वाला रूप योग लगाओ। ऐसा लगेगा कि कोई अग्नि जल रही है जिसमें मेरे विक्रम सब विनाश हो रहे हैं और मैं पूरा लाइट होता जा रहा हूं। सब अनुभव की बात है। और जो विघ्न है वो तो हमें तंग करते हैं। तो ऐसी लगन मगन और अगन वाली स्थिति के योग में कितने भी विघ्न आएंगे वो भाग जाएंगे। वो निर्बल से लड़ाई बलवान की कहानी दी और तूफान की सुना है ना, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आएगा, आखिर में कौन हारा? आंधी तूफान और दीपक जगा रहा, सब खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और विघ्न किस चीज के आते हैं? क्योंकि 2500 वर्ष से माया को हमने दोस्त बनाया था, विकारों को अपना साथी बनाया था। जिस व्यक्ति ने 2500 वर्ष तक अपने साथी को अपना बनाया, वो क्या आपको जल्दी छोड़ देगा? वो भी आपको टटोलेगा। भगवान भी ठोकता है तो वो भी, माया भी टटोलती है। तो आज बाबा ने क्या कहा, माया आती है तो क्या करती है? चाय पिलाने लगती है, बिस्कुट खिलाने लगती है। पर आप जब उसकी लगन में मगन है और कोई भी माया का रूप आएगा, अगर आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया बैठ जाओ तो आपके पास बैठ जाएगा, और उसकी बातें सुनने लगोगे तो उसको लगेगा चाय बिस्कुट पी रहा हूं, बैठा रहूं, लेकिन उसकी तरफ देखो नहीं, मुड़ो ही नहीं, कहो ही नहीं कि आप बैठो, तुम चले जाओ। मैं तो अपने सच्चे साथी की बन गई ना अब आत्मा, तुमसे कौन बात करेगा? अब मैंने पहचान लिया तुम्हें अच्छी तरह, भले तुम मेरे साथ 2500 वर्ष तक रहे, अब मैं अपना साथी आपको नहीं बनाऊंगा। मैंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिवान साथी को सिलेक्ट कर लिया है, अपने हृदय में बता लिया है, वो ही मेरा दोस्त है, वो ही मेरा सर्व संबंधी, और कोई संबंध नहीं है मेरे, एक ही संबंध है सबसे, आत्मा आत्मा, भाई बहन भाई भाई, और ब्रह्मा के नाते से भाई बहन। तो देखिए माया का विघन कितनी जल्दी भागता है। माया क्या करेगी? और दूसरा माया किस रूप में आती है? व्यर्थ संकल्प, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी बाबा क्या कहते हैं, ना समय को नष्ट करो और ना संकल्प को। आज क्या बताया, सबसे बड़ा खजाना समय और संकल्प। बाबा हर रोज हमें मुरली में बता रहे हैं, पढ़ा रहे, कह रहे हैं, वो हमारे लिए बाबा का इशारा है। मुरली वो हमें समझना चाहिए, और जब हम अच्छी तरह से लगन मगन अगन को ठीक ढंग से अपने साथी बना के रखेंगे तो विघन सेकंड में भाग जाएंगे, कोई विघन आएगा नहीं। विघन से आप दोस्ती कर लेते हैं व्यर्थ संकल्पों से, जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो है सब अच्छी है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हुआ था अच्छा, हो रहा है अच्छा, होगा अच्छा। जो भी जैसा है आपके लिए शुभ भावना रखनी है आपको उसके लिए। कोई गलत कर रहा है, अगर वो चाहता है तो आप तैसी बन के उसको बताओ, नहीं चाहता है तो बताने की जरूरत नहीं है, साइलेंस होना अच्छा है। कर रहा है करने दो, आपका क्या है। गलत वाला उसका, हरेक आदमी को उसके कर्म का फल प्राप्त करना ही है, ये तो हम जानते हैं ना ज्ञान में। अंगूर है, अनार है, नाशपाती, आप खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन कर्म का फल ना चाहते हुए भी आपको खाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती भी खाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है। तो हमारा निशाना ठीक कब लगेगा, जब हम इस बात का टेंशन रखेंगे कि वो मेरा साथी सच्चा है और उससे मुझे अपनी बुद्धि का तार जोड़े रखना है, जिससे लाइट माइट सब मुझे मिले, जो नशे मेरे टिके रहे, विचार सागर मंथन मेरा चलता रहे, हर समय मैं खुशी में रहूं। खुशी में कोई घुंघरू पहन के नाचना नहीं है, अंदर में खुश रहना है कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। बाबा तो कहता है तुम्हारे आगे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं है। पहले हम कितना डरते थे एक मिनिस्टर से मिलने में, अभी कोई डर ही नहीं है, भय नहीं, चिंता नहीं। क्यों? हम तो बेगमपुर की वास्ता है, बेफिक्र वास्ता है, गम की दुनिया में रहते हुए भी बेगमपुर। अब तीसरी बात आपको बता देती हूँ, ऐसे लंबा करेंगे तो ये और ही लंबा होगा, फिर टाइम हो जाएगा। तीसरी बात आपको बताती हूँ, खुराक। हमारा निशाना भी ठीक रहे और नशा भी ठीक रहे, उसके लिए डेली हमें बाबा खुराक देता है। ऐसा कोई पिता होगा जो डेली डेली एक घंटा बैठ बैठ के माता मारे और बच्चों के ऊपर मेहनत करे, पढ़ाए। आज 76 वर्षों से बाबा हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हम रिटर्न क्या दे रहे हैं, विचार करिए। लेकिन वो मुरली को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, ऐसे ही पढ़ लिया, सुन लिया दो बार तीन बार, नहीं। एक एक लाइन गॉड फादर का महावाक्य है, वो मैंने अपने जीवन में कितना लाया। उसके पहले आप तीन बातों का अटेंशन रखो। एक बात है ए बी सी। ए माना कुछ बातें ऐसी हैं जो मुरली हमारे अंदर समा जाए, तो कुछ बातें जीवन में ऐसी आती हैं जो हमें अपने अंदर फंसाना चाहती हैं, तो आप उनको अवॉइड करो, अवॉइड करो। और दूसरी बातें ऐसी हैं कि दुनिया के अंदर चार चीज है, दुख, अशांति, पाप, धोखा और धक्का। अब जब आपको मालूम पड़ गया कि इस दुनिया में इसी चीज की भीड़ लगी है, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो जहां ट्रैफिक होता है वहां से मोड़ लेते हैं, अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं ना, या उसी में घुसेंगे। जब आपको मालूम है कि दुनिया में यही चार पांच चीजों का ट्रैफिक है, धोखा धक्का दुख अशांति पाप और विकारों की ज्वाला जल रही है। तो हमें अपनी जीवन रूपी गाड़ी को ऐसी हर चीज से बाईपास कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। इसके लिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि मुरली रोज ध्यान से पढ़ो, समाओ और योग ऐसा करो कि यहां बैठ करके भी संसार का दुख अशांति का वातावरण खराब खत्म कर दें, जिसको कहते हैं मनसा सेवा। तो हमें उसके लिए बाईपास होकर के उसमें घुसना नहीं चाहिए। आप देखिए कहीं एक्सीडेंट हो जाए और आप दया दिखा के गाड़ी को रोक लो और वहां खून बह गया। हमारे सामने एक बार ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और हम दया दिखा रहे हैं कि रोको, वो आदमी मरा जा रहा है। तो लेकिन दूसरे ने कहा आप जल्दी से अपनी गाड़ी ले जाओ, नहीं अभी आप पकड़े जाओगे। तो ऐसा संसार नहीं है कि हम खड़े होकर के आज की इस विषयी दुनिया में किसी की पंचायत में घुसे, किसी में जाने की कोशिश करें। इसलिए अपने लाइफ को बाईपास होकर निकाल लो। सोचो इससे हमें दूर जाना है, हमें तो देखते हुए भी नहीं कुछ देखना है। बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है ना, ये सारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, देखते हुए भी कुछ नहीं देखना है, सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनना है और जानते हुए भी अजान होकर के रहना है। तीसरी बात, कुछ बात ऐसी होती है जो अपने आप छूट जाएंगी। कई लोग ऐसे भी है जो कहते हैं विकार भी अपने आप छूट जाएंगे, और अभी तक मुरली बाबा चलाता है कि बी के ब्राह्मण अगर विकारी बना तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो कम से कम काम एक ऐसी अग्नि है, उसको हमें एकदम लाइफ से कैंसिल करना है, दृष्टि में वृत्ति में और हर प्रकार की एक्शन संकल्प प्यूरिफाई जिसको कहते हैं। जब तक हमारी पवित्रता 100% नहीं है तब तक कोई भी कार्य में हमें 100% सफलता नहीं मिलेगी। तो उसी चीज को एकदम लाइफ से कैंसिल करो। हाँ थोड़ा क्रोध है, लोभ है, मोह है, आप उसके लिए कह सकते हैं धीरे धीरे निकल जाएगा, पर ये ऐसी चीजें धीरे धीरे नहीं। बाबा ने शुरू में कहा सबको, पहले इसको दृढ़ता से व्रत लो, कैंसिल करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब आप देखिए कि बाबा के जो मुरली के महावाक्य हैं, उसको आप अपने जीवन में समा सकेंगे। कितनी बातें हमें बाबा रोज बताते हैं। अभी 10 तारीख की जो अव्यक्त मुरली गई, क्या बोला, ये जो शरीर है सांप है, सांप को छुआ तो काटेगा। इसको देखो भी नहीं, किसको देखो, मणि को देखो। प्यारे बाबा हमें रोज रोज मुरली की खुराक देती है। हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम भोजन के बिना रह जाएं पर मुरली के बिना नहीं रहे। भोजन के बिना दो चार दिन रह जाएंगे तो इतनी बात वो नहीं होगी, लेकिन मुरली के बिना रहे तो आत्मा थोड़ी हल्की हो जाएगी, उसको खुशी नहीं रहेगी। इतना हमारा मुरली धरते और मुरली से प्यार होना चाहिए, वो ही हमारी खुराक है। और मुरली हमें सब कुछ देती है, खाना भी देती है, डॉक्टरी भी सिखाती है, पढ़ना भी पढ़ाती है और पढ़ना सिखाती भी दूसरों को। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं, वो पानी पिलाते हैं बोतल में डाल के लाल पानी। पहले जो बांदेली माताएं थी वो बहाना करके जाती थी डॉक्टर के पास, क्या मेरा बच्चा बीमार है, दवाई लेने जा रही। पति लोग मारते थे, तकलीफ करते थे, तो वो क्या करती थी, डॉक्टर के पास जाके लाल बोतल में पानी ले आती, लाल पानी बोतल में, और दिखा देती। वो सोचता कि सचमुच डॉक्टर के पास गई है, लेकिन रियली में वो जाती बाबा के पास। और बाबा की मुरली सुन के आती। तो अभी भी बाबा क्या कहते हैं, बांदेली गोपियां मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुरली के बिना रह नहीं सकते हैं। एक दिन भी मुरली की खुराक इतनी बड़ी है, वो आपको सब कुछ सिखाएगी, डॉक्टर भी बनाएगी, दवा भी देगी, निरोगी काया कर देगी, जीना सिखा देगी, खेलना सिखा देगी। ये लाइफ इस गेम भी है, गेम में क्या आता है, कभी थोड़ा हार भी जाते हैं तो अभी कोई चिंता की बात नहीं किसी बात में, लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए, मैं जीतूंगा जरूर, मैं विजयी रतन हूं, सफलता मूर्त हूं। और हमारे जीवन के अंदर त्याग, तपस्या और बैराग भी होना चाहिए। आपको मालूम है त्याग, तपस्या, बैराग हमारे जीवन का आधार है। अभी बाबा क्या कहते हैं, अभी जाने वाले हम, जब व्यक्ति जाने वाला होता है, कहीं जर्नी करता है, रिटर्न जर्नी होने वाली होती है, तो क्या करते हैं, सामान कुछ ना कुछ लेते हैं खरीद के। तो यहाँ सामान क्या लेंगे, मार्केट में जाएंगे, कुछ कुछ खरीद लाएंगे। लेकिन आप जब इस जर्नी में जाओगे तो क्या वो मार्केट का सामान लेके जाओगे? तो आज बाबा ने क्या कहा है, आपका जमा का खाता कितना है चेक करो। जमा का मतलब क्या है, कोई भी व्यापारी अगर उसके बैंक में 2000 रुपए हैं, उसे शांति मिलेगी? कहेगा 10 लाख जब तक नहीं होगा मुझे शांति नहीं है। तो अगर हमारी जमा का खाता 500 रुपया भी बैंक में है या नहीं, तो आपको पीस आया, शांति मिलेगी? नहीं। तो हमें जब रिटर्न जर्नी करनी है तो क्या करना है, अपना खाता जमा करना है। कोई बोरी बिस्तर लेके नहीं जाएंगे। और बाबा ने पहले पहले जिन माताओं को निकला वो भी अपना कुछ लेके नहीं आई, खाली हाथ लेके आगे भाग गई। लेकिन बाबा ने आज किसी चीज की कमी की? कुछ भी नहीं। प्रकृति हमारे पीछे पीछे आ गई, जब प्रकृति को त्याग किया सब कुछ से भरपूर कर दिया। तो हमें पुण्य का खाता मेरा कितना जमा है, दान कितना करता हूं, देवता बनना है, लेवता नहीं देवता, हर वक्त ये रहना चाहिए कितना दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, यज्ञ में मैं क्या कर रहा हूं, कहीं बोझा तो नहीं चढ़ रहा है मेरे ऊपर, मैं इतना दान करूं जो मेरा बैंक अविनाशी बैंक में भविष्य के लिए बहुत जमा रहे और उससे 100 गुना करके मुझे मिल जाए। योग का खाता, गुणों का खाता, शक्तियों का खाता, ये सब हमें जमा करना है। प्यार का खाता, आपस में मेरा कितना सुंदर व्यवहार है, कितना प्यार है। हमसे कहते हैं हमें बड़ों की बात तो अच्छी लगती है, छोटों की नहीं अच्छी लगती है, पर छोटों से भी प्यार करो और बड़ों को रिगार्ड दो। छोटों की बात भी आपको अच्छी लगनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, बड़े तो बड़े हैं ही, हमारी सहन शक्ति जब ही है जब हम छोटों का भी सहन कर लें। तो सहन शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब गुण हमें बाबा दे रहे हैं। तो गुणों का भंडार हमारे पास कितना है, वो सब हम जमा का खाता कहां से करेंगे, मुरली से, वही हमारी सब चीज की खुराक है। रोज जो बाबा मुरली बताते हैं उसको बार बार याद करो, योग में बैठते हुए याद करो, आज बाबा ने क्या बताया, मेरे लिए क्या बताया। और वर्तमान समय जाने का टाइम है, हमें सब चीज से बैराग होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, सिकंदर था, देखो सिकंदर बहुत अच्छा था, फिर भी लूट मार करने के लिए रहता था, जोड़ता था हमेशा। तो एक बार विदेश से भारत में आ रहा था, अपने देश से लूट मार के लिए अपने अनेक साथियों को लेके आने लगा। जब आने लगा तो उसने कहा अच्छा मैं अपने गुरु के पास जाता हूं, गुरु से पूछ के आऊं तुम्हारे लिए भारत से क्या लाऊं। गुरु के पास गया, गुरु ने मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, कुछ तो आपको बोलना ही चाहिए, बोलना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं, मेरे पास सब कुछ है, सच्चा गुरु के पास तो सब कुछ होना ही चाहिए। वो कहता है नहीं, आप कुछ बोलिए, मैं जरूर कुछ लाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा नहीं मानते हो तो आप मेरे लिए भारत से एक योगी ले आना। बोला ठीक है। भारत में आया लूटपाट करने के लिए, बड़े साथियों को लेकर, जमघट लेकर, हाथी घोड़े सब। तो वहां के उसने सबसे पहले कहा कि मैं गुरु की चीज ढूंढूंगा। तो कुछ व्यक्तियों से कहने लगा यहाँ कोई योगी मिलेगा? उन्हें कहा मिलेगा, एक पर्वत पे योगी रहता है, पर उसके पास हम नहीं जा सकते, आप जाओ। तो वो चला गया उसके पास। आप जाओ, आप तो राजा हैं, आपको वो कुछ नहीं कहेगा। वो गया तो उस योगी के पास, कम से कम उसने एक दो घंटे प्रार्थना की कि मेरे गुरु की आज्ञा है, भारत से योगी लाना है, आप चलो। वो कहे मैं क्यों जाऊंगा, मेरे पास तो यहाँ सब कुछ है। कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी पहने हो बस। वो कहता नहीं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है। कहा आपके पास हाथी घोड़े सोना चांदी रुपया कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं। उसने बहुत बहुत लालच दिया, हम इतना सोना देंगे, महल देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, आप चलिए, आप तो खाली बैठी है, कुछ भी नहीं है। कहा मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है। तो वो जब वापस लौट आया निराश होके, तो इस बात की चिंता करने लगा कि उसके पास कुछ भी नहीं था तो भी कहता है मेरे पास सब कुछ है, आखिर ऐसी क्या चीज है? जरूर कोई उसके पास परमात्मिक शक्ति होगी। तो वो अपने लोगों से कहने लगा जो साथी थे कि साथियों, वो गुरु के पास कुछ नहीं है, कहता है सब कुछ है, और मैं इतना लूटपाट कर रहा हूं, क्या मैं कुछ लेके जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा? उसने कहा आप कुछ लेके नहीं जाओगे, एक सुई तक भी लेके नहीं जाओगे। तो उसने क्या कहा कि जब मैं मरूंगा मेरे हाथ बाहर ऐसे कर देना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, और मैंने इतना लूट माट करके कमाया और अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, सब वहीं पे छोड़ गया, हथियार सब डाल दिए, बैराग आ गए, और वो भी जाके अपने गुरु के पास चरणों में गिर गया कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो आप विचार करिए, बाबा ने हमारे पास कितने योगियों को यहां तैयार करके रखा है, कितने योगी, कितनी महान दादियां फरिश्ते, और उनको देख देख करके अगर हम योगी नहीं बने तो हम कब बनेंगे? अभी टाइम है बस। तो अभी हमें बैराग आ जाना चाहिए, त्याग होना चाहिए संपूर्ण रीति से। इस असार संसार में कुछ भी नहीं है, कोई चीज में आशक्ति नहीं, अनाशक्त भावना, लेकिन एक परमात्मा में 100% निश्चय और विश्वास होना चाहिए। इतना निश्चय कि जिसके साथी वो है, हमने हजारों चीजों का सामना किया, आंधी तूफान बाढ़ सब कुछ आया, लेकिन कभी डरे नहीं, कभी पीछे चले नहीं, मुड़े नहीं, बाबा की कुछ बातों को ऐसे पकड़ के रखे जो हमें आज तक यहां तक पहुंचा दिया। और अभी भी हम किसको देखते हैं? कई बाबा के बच्चे हैं जो आने वाले स्टूडेंट को देखेंगे, कोई कमजोर है उसको देखेंगे, लेकिन बाबा ऐसे नहीं कहता है। क्लास है आज, मुरली में क्या कहा, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को कुछ देता हूं, सबको एक जैसा दे रहा हूं, फिर भी फर्क हो जाता है। क्यों होता है? हमारी पढ़ाई में, हमारी धारणाओं में, हमारे विचारों में, हमारी शक्तियों में जो बाबा दे रहे हैं वो लेने में कमी हो जाती है। इसी कारण से हमें जितना पाना चाहिए उतना नहीं पाते हैं। और कितने लोग हैं अभी तक किसमें लगे हैं? तोड़ने में। पर बाबा क्या कहता है, तोड़ना है या जोड़ना है? कहते हैं घर की एक लक्ष्मी होती है, वो दस घर को एक घर करती है, और एक ऐसा है एक घर के दस टुकड़े करता है। तो कितने हैं? ऊपर से बहुत मीठे हैं, बहुत जोड़ने की बात करेंगे, लेकिन अंदर से तोड़ने और काटने की बात करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने कल भी सुनाई थी कि एक दर्जी था, वो कपड़ा सिलाई करता था, उसका नाती आया कि दादा दादा मेरा कुर्ता सिल दो। तो उसने सुई निकाली सोफा चापा से, वो सिलाई कर दिया, फिर पैर के नीचे से निकाली कैंची, उसमें धागा लटका रह गया कि धागा काट दो। तो काट दिया, तो उसने कहा ये क्या, आपने सुई को ऊपर रखा है सोफा पे और कैंची को पैर के नीचे से क्यों निकाला? उसका प्रश्न चला छोटे 5 साल के बच्चे का। तो उसने कहा देखो सुई होती है वो जोड़ने का काम करती है और कैंची होती है काटने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करता है उसको आप माथे पर रखो, रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो। जो तोड़ने का काम करता है उससे दूर रहो या उसे दबा के रखो। तो बाबा के बच्चों को ब्राह्मणों को हमेशा मिलाने का काम करना है, जोड़ने का काम करना है। हमारी दादी चंद्रमणि कितनी न्याय करने कहीं जाती थी, फैसला करती थी, ऐसा बहुत अनुभव है। वो एक बार आई, कहा मैं जोड़ने के लिए आई हूं, तोड़ने के लिए नहीं। 20 व्यक्ति एक तरफ और 5 एक तरफ, लेकिन उसने सही जजमेंट दिया, जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। तो हम सबको ऐसा होना चाहिए, हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, सबको आपस में मिलाने का काम करें और मिलकर एक दो को लेकर चलने का काम करें। वो हमारे किसके ऊपर है? हमारी विचारधाराओं के ऊपर है, हमारे व्यवहार के ऊपर है। जितना श्रेष्ठ हमारा व्यवहार होगा और जितनी विचारधारा अच्छी होगी, उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चलते जाएंगे। तो इसी प्रकार मैं सोचती हूं, अगर इन बातों पर हम विचार करें और अपने हमेशा नशे में रहें और निशाना ठीक बाबा के पास लगेगा और मुरली की खुराक भी हमें जो डेली मिलती है उसको लेते रहे। पर आपको ध्यान भी कुछ रखना पड़ेगा। आप देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो 3 बात का ध्यान रखता है, उसका हार्ट स्ट्रांग होता है और उसके माइंड में लव होता है और हाथ सेफ रखता है जिससे कोई कीटाणु उसके अंदर नहीं आ जाए। तो हमें भी बाबा ने सबको सर्जन बनाया है, कंपाउंडर बनाया है। कोई भी जगह हमें ऐसी जगह नहीं जाना है जो किसी की बीमारी के कीटाणु मेरे ऊपर लग जाए या किसी के संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन हमें सेफ्टी भी रखनी है, हार्ट को स्ट्रांग भी करना है और स्नेह भी रखना है। वो क्या करता है, मरते हुए व्यक्ति को कहेगा नहीं आप कल अच्छे हो जाओगे, सिर पे हाथ फेरता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हार्ट में आप लव रखो, लव फैक्ट्री के आप मालिक रहो, 3 फैक्ट्री के मालिक आप, एक आइस, एक सुगर और एक लव। आइस फैक्ट्री माने माइंड को आइस रखो, ठंडा, कोई कितना भी गर्म है लेकिन आप अपने दिमाग को ठंडा रखो। उसी टाइम बाबा क्या कहता है, जब आपको कोई टेंशन में कुछ बोलता है, कुछ कहता है गलत, तो आपको क्या कहता है बाबा, चुप रहो, मौन में हो जाओ, मुख में मुलहरा डाल दो, ये तरीका बताता है। तो हमारा कितने बड़े हम मालिक है, दिमाग हमें इतना अच्छा मिला है, बाबा ने ज्ञान से इतना वास कर दिया, इतना हमें आर्टिस्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो हम और क्या, कोई व्यक्ति के मालिक हो ना हो, लेकिन आपके दिमाग के तो मालिक हैं, शांत रख तो सकते हैं। और मुख से क्या निकालना है? शुगर, शुगर मीठा। आप देखिए यहाँ कितनी दादी दीदी अपने निर्वैर भाई, उनके पास जाओ तो अनुभव होता है बाप दादा की तरह मीठा बोल रहे हैं। इतना अच्छा अनुभव होता है। किसी के पास जाओ जो योगी हैं, बाबा ने हमारे लिए तैयार किए हैं, उनसे मिलो, उनको देखो, वैसे बनो। तो अब मुख हमारा क्या है? शुगर फैक्ट्री, उसके हम मालिक हैं। हमारी जो इच्छा होगी वही हम वैसे बोलेंगे ना, प्यार से। कड़वा बोलेंगे तो क्या करेंगे? किसी को अच्छी लगती है कड़वी चीज, और बोली हमें क्या करती है? तख्ते पर चढ़ा देती है, और बोली राजा ही के तख्ते पे बिठा देगी। और हार्ट में ये नहीं कि अच्छा है तो मेरा प्यार है, ये खराब है तो मेरा प्यार नहीं है। हर एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, मेरा भाई बहन है, सबसे मेरा प्यार है। ऐसी धारणा अपने जीवन की बनाओ। कोई कैसा भी है, कोई के शरीर को देख के हम नफरत करते हैं, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है, नहीं, आप उसकी आत्मा को देखो। हम चमड़ी को क्यों देखें? इसकी तो बहुत कहानी है। चमड़ी को कौन देखता है? चमार देखता है। क्लास लंबा हो जाए इसलिए मैं कहानी नहीं बताती हूं, लेकिन हमेशा किसको देखो? आत्मा को। जब आत्मा को देखेंगे तो हमें उसके लिए लव आएगा, प्यार आएगा। वो आपको दो बात सुना देगा, फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, मेरी बहन है, भाई है। लौकिक में दो पांच भाई बहन होते हैं, आपस में कुछ किसी को कह देते हैं, क्या नफरत होती है? नहीं होती है। तो एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो किसी ने कह दिया कि मुश्किल काल समुद्र में डुबकी लगाना है, किसी ने कहा हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक के जवाब से वो प्रसन्न हुआ कि सबसे मुश्किल काम है नफरत को प्यार में बदल देना। समझ भाई बात? सबसे मुश्किल काम है नफरत को प्यार में बदल देना। आपसे कोई नफरत करता है, बात नहीं करना चाहता है, पर आप उससे प्यार करो। आप 100 बार प्यार करो तो एक बार तो वो आपको करेगा, कोई बात नहीं है। आप हार मत खाओ कि मैं इसको प्यार करना चाहती हूं, वो नहीं चाहता है, तो भी आप करते जाओ, अपनी तरफ से देते जाओ। मैं देता हूं, वो नहीं देता है, ना देने दो। कोई भी चीज भी लेने की इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए।